ओम शांति। छत्तीस नंबर के रजिस्टर में 88 पेज पर 24/8/91 का प्रातः क्लास रिकॉर्ड चला है। ये कौन आज आया सवेरे 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 सवेरे, ये कौन आकर मुरली बजाते हैं? दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी मुरली सुन रहे हो, ज्ञान सागर पतित पावन स्वामी प्राणेश्वर बाप से सुन रहे हो। अभी माने कब कब सुन रहे हो? अभी माना संगम युग में तुम ज्ञान सागर बाप से, प्राणेश्वर बाप से, पतित पावन बाप से सुन रहे हो। वो है प्राण बचाने वाला ईश्वर जिससे तुम सुन रहे हो। कब बचाता है प्राण? सत्युग त्रेता में तो बचाने की बात ही नहीं, द्वापर कलयुग में भी नहीं। जब विनाश का पीरियड होता है, कयामत का समय, चारों तरफ काल ही काल मंडराता है, तब वो प्राणेश्वर बाप प्राण बचाने वाला है। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ, वो तो हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद। बेहद की मदद अभी क्या मिलती है? वो हद की मदद मांगते हैं कि हमारा जीवन बचा दो, मरने से बचा दो, शरीर की मौत से मरना बचना चाहते हैं। और यहाँ बेहद की बात कौन सी है? यहाँ बेहद की बात है कहीं हम ज्ञान से न मर जाएं, बाप के बच्चे बने। बाप अमरनाथ है तो अमरनाथ के बच्चे भी कैसे होने चाहिए? अमर भव का वरदान वाले, ऐसे नहीं कि माया रावण उनको मार ले जाए। तो तुमको मिलती है बेहद की मदद। माया रावण तुमको मारना चाहता है और बाप तुमको बचाने की मदद देते हैं, क्योंकि तुम्हारा बेहद का बाप है ना, तो बेहद की मदद देते हैं। तुम जानते हो आत्मा गुप्त है और बाप भी गुप्त है। जब बच्चे का शरीर प्रत्यक्ष है तो बाप भी प्रत्यक्ष है। आत्मा गुप्त तो आत्मा का बाप भी गुप्त, बच्चे का शरीर प्रत्यक्ष है तो बाप भी प्रत्यक्ष है। आत्मा गुप्त है तो बाप भी गुप्त है। तुम जानते हो बाप आया हुआ है हमको बेहद का वर्षा देने। उनकी श्रीमत है किनकी? जो हमको बेहद का वर्षा देने के लिए आया हुआ है। बेहद का वर्षा क्या है? बेहद का वर्षा है विश्व की बादशाही। तो जो बेहद का वर्षा देने वाला है उनकी है श्रीमत। उनकी कह के दूर क्यों कर दिया? जरूर भविष्य में पार्ट बजने वाला है जो बेहद का वर्षा प्राप्त कराने वाला है। उनकी मत है श्रेष्ठ मत। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता मशहूर है, सिर्फ उनमें नाम बदली कर दिए। गीता को क्या कहते हैं, किस संबंध से बुलाते हैं? गीता माता, तो गीता माता मशहूर है, सर्वशास्त्र शिरोमणि है, सब शास्त्रों का सार उसमें भरा हुआ है। शास्त्र मन शास मन शासन करना, शास्त्र माना शासन करने का विधान, तो सब शास्त्रों से भरी पूरी सार जिसमें समाया हुआ है सब शास्त्रों का, उस गीता में नाम बदली कर दिया है। किसका नाम डाल दिया है? कृष्ण को पति बनाए दिया। तो गीता क्या है? गीता है माता, और जो बच्चा है उसको पति बनाए दिया। सब की बात यज्ञ की आदि की ही बात है, ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया की ही बात है। वो माता जिसके लिए मुरली में बोला है, 10 वर्ष से रहने वाला ध्यान में जाती थी, मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराती थी, डायरेक्शन देती थी, टीचर बन करके बैठती थी, बाबा उनमें प्रवेश करते थे। तो मम्मा बाबा जैसी हस्तियों को डायरेक्शन देने वाली वो श्रेष्ठ आत्मा ही माता पिता थी। तो हमारी गीता माता भी चैतन्य है और बाप भी चैतन्य है, लेकिन गलती से भक्तों ने नाम बदल दिया। गीता माता का जो पहला पहला बच्चा पैदा हुआ, कृष्ण बच्चा, यज्ञ के आदि में ही कौन हुआ? कृष्ण माना ब्रह्मा की सोल, जिसने पार्ट बजाया दादा लेखराज, पहले नाम था और बाद में टाइटल क्या मिला? प्रजापिता ब्रह्मा। वो माँ बाप का टाइटल ही उसको मिला बच्चे को, लेकिन भक्तों ने ये समझ लिया कि यही गीता का भगवान है। वो कोई विश्व की बादशाही का वर्षा देने वाला परमात्मा पार्ट का स्वरूप नहीं है। ये तो बहुत भारी गलत फहमी हो गई। जो बच्चे को माता का पति बनाई दिया, जुल्म कर दिया। अब तुम जानते हो श्रीमत भगवान वाच है, ये भी समझ गए भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है, 2, 4, 10, 20 अनेक नहीं है। सर्व का सदगति दाता एक गाया हुआ है। एक का क्या मतलब हुआ? बिंदु बाप, सुप्रीम सोल, जिस बिंदु का नाम शिव है। मेरी तो आत्मा बिंदु का ही नाम शिव है। सदगुरु अकाल मूर्त कहा जाता है। तो मूर्त बनता है या नहीं बनता है? सदगुरु मिला दलाल, तो दलाल के रूप में तो जरूर साकार होना चाहिए। और सदगुरु का काम क्या है? सदगति करना। पहले आत्मा मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति करेगा या पहले शरीर की सदगति हो जाएगी? पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा चैतन्य बने। जो जड़क तो छाया हुआ है तमो प्रधानता के कारण, वो आत्मा में मनन चिंतनशीलता आ जाए, ऐसा ज्ञान सुनाता है जिससे बुद्धि जो जड़ बनी पड़ी है, जड़वत, वो चैतन्य बन जाए, मनन चिंतन मंथन चलने लग पड़े। किसका? देह और देह के संबंधियों का, देह की एक्टिविटीज का नहीं, नई दुनिया का मनन चिंतन मंथन, ज्ञान की बातों का मनन चिंतन मंथन, सर्विस के प्लानिंग्स का मनन चिंतन मंथन वो बुद्धि में चल पड़े। ये हुई आत्मा की सदगति, मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति। सिवाय परमपिता परमात्मा जो मन बुद्धि रूपी आत्मा का बाप है, और कोई नहीं कर सकता। आत्माओं का बाप उसको कहते हैं परमात्मा। जो आत्माएं पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, 84 के चक्र में पार्ट बजाती हैं, उन आत्माओं में परम पार्ट बजाने वाला कौन हुआ? परम आत्मा। उसकी भेंट सुप्रीम सोल के साथ नहीं की जा सकती, क्योंकि सुप्रीम सोल 84 के चक्र का पार्ट नहीं बजाता। इसलिए कहा भी जाता है परम पिता परमात्मा, जैसे शिव शंकर, बाप दादा, बाप पहले शिव पहले, ऐसे ही यहाँ परम पिता पहले। किसका पिता? जितनी भी आत्माएं हैं उनका परम पिता, माना प्रजापिता वाली सोल का भी पिता, जो मनुष्य सृष्टि का जो बीज है पहला बीज, उसका भी पिता। तो परम पिता शब्द पहले है और परमात्मा शब्द बाद में। बाद में क्यों है? क्योंकि परम पिता जब आता है तभी ही परम पार्ट बजाने वाली आत्मा को अपने स्वरूप का बोध होता है। अगर वो ना आए तो उसको अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। तो उनकी श्रीमत है जिनको कहते हैं परम पिता परमात्मा, वो शेषाचारी बनाने वाला एक ही बाप है। अगर बिंदु कहें, एक ही बिंदु है, तो पता चलेगा कौन सा बिंदु? उस बिंदु की पेक्युलरिटी का पता चलेगा? नहीं चलेगा, जब तक शरीर धारण न करे। और वो शरीर कैसा हो? काम बताया, सर्व का सदगति दाता, कोई एक की सदगति करने वाला स्वरूप नहीं। 500 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं सब की सदगति होती है, वो ही नरसिंह नारायण बनाते हैं। बैठा है ब्रह्मा के बाजू में बोलने वाला सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु, और कहता है वही नरसिंह नारायण बनाने वाला है। ऐसे कह के दूर क्यों कर दिया? जरूर वो पार्ट भविष्य में बजने वाला है। कथा भी सत्यनारायण की है, झूठ नारायण की कथा नहीं है। सत्ययुग स्थापन करने वाला भी कौन हुआ? सत्यनारायण, ट्रुथ गॉड फादर कहा जाता है। गाया जाता है अमर कथा अमर पुरी का मालिक बनने अथवा नरसिंह नारायण बनने की कथा है। तो बात तो एक ही है, ये है मृत्युलोक, भारत ही अमरपुरी था, ये किसको पता नहीं है। यहाँ भी अमर बाबा ने भारतवासियों को सुनाया है, एक पार्वती व एक द्रौपदी नहीं है। पार लगाने वाली कोई एक पार्वती नहीं है, ध्रुव पद पाने वाली कोई एक द्रौपदी की बात नहीं है। ये तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं, शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। सुनाते किसके द्वारा है? ब्रह्मा द्वारा सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे रूहों को समझाता हूँ। सुनाना और समझाना ये अलग बात है। जब सुनाने और समझाने से कोई नहीं मानता है तब सख्त रूप होता है बाप का। तो ब्रह्मा द्वारा क्या करता हूँ? सुनाता हूँ और बच्चों को समझाता हूँ। बाप ने समझाया है बच्चों को आत्माभिमानी जरूर बनना है, जरूर माना कंपल्सन है। इस बात के लिए बाप की पढ़ाई पढ़ने के लिए, बाप के सन्मुख बैठने के लिए ये कंपल्सन है क्या कि आत्माभिमानी जरूर बनना पड़े। इसलिए मुरली में पहले पहले क्या बोलते हैं? रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं, रूहानी बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। देह अभिमानी सांडों को नहीं पढ़ाते। देह अभिमान आया और पहले तो वो बात एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा, धारण ही नहीं करेगा। आत्माभिमानी बाप ही बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिनको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परमपिता परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। ये जो कह देते हैं कहावत आत्मा सो परमात्मा, ये निकली कहां से? ये भारी भूल भी कहां से शुरू हुई? संगम युग से। कैसे? ब्राह्मणों की दुनिया से संगम युग से ये भारी भूल तो शुरू हुई, लेकिन कैसे? बात है एक आत्मा की, जो हीरो पार्टधारी है, जिसमें सुप्रीम सोल बाप शिव प्रवेश करके मुकर्रर रथ के रूप में पार्ट बजाते हैं। बात है एक की, लेकिन बहुतों ने उसे अपने जीवन में ढाल लिया है। क्या क्या ढाल लिया है? कि जो भी आत्मा है वो परमात्मा का स्वरूप है। ये गलतफहमी निकलती यहीं से है। कैसे निकलती है? मुरली में ये बताया है कि शिव बाप बच्चों में प्रवेश करता है। बहुत बच्चे हैं जिनमें बाप प्रवेश करता है। रुद्राक्ष की माला इस बात की यादगार है। बाप ने जिन बच्चों का मुख लिया है उनकी रुद्राक्ष की माला है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि वो रुद्राक्ष में एक मुख वाला मणका सिर्फ एक ही होता है। एक मुख वाला मणका मिलता ही नहीं है, और बाकी मणके अनेक मुख वाले होते हैं। कोई दो मुख वाले, चार मुख वाले, चौदह मुख वाले, यानी एक मणका ऐसा है जिसमें सुप्रीम सोल बाप ही प्रवेश करते हैं। बाप दादा के अलावा और कोई उनमें प्रवेश उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। और दूसरे दूसरे जो मणके हैं वो मुकर्रर नहीं है। कभी कोई आत्मा प्रवेश करेगी, कभी कोई दूसरी भी आत्मा प्रवेश करती है। जैसे मुरली में बोला है, कहते हमारे में मम्मा आई, हमारे में बाबा आया, हमारे में शिव बाबा आया। आज शिव बाबा आया, कल कुत्ता बिल्ला भी आ जाएगा। फिर मुकर्रर रथ का महत्व क्या रहा? टेम्परेरी रथ भी मुरली में बोला है और मुकर्रर रथ भी मुरली में बोला है। टेम्परेरी सदाकाल नहीं होता। आदि से अंत तक जो रहे उसको कहेंगे मुकर्रर। जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, ये नकल किसकी की? सदाकाल रहने वाला। आत्मा सो परमात्मा ये किसकी नकल की? प्रजापिता की नकल की। सुप्रीम सोल बाप जिस नारायण बनने वाली आत्मा में प्रवेश करता है उसकी नकल करके बैठ गए। समझ लिया, हर आत्मा जो भी है वो परमात्मा पार्ट बजा सकती है। कितनी भारी भूल सारी दुनिया में फंसी हुई, सारी दुनिया में फैली हुई है। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि। विलायत वाले भी पत्थर बुद्धि हैं। ये भी बुद्धि में नहीं आता है कि हम जो ये बांस आदि बनाए रहे हैं ये तो अपना ही खून, तो सारी दुनिया का खून करने के लिए बनाए रहे हैं। इन बांस से क्या होगा? अपना भी खून बहेगा और सारी दुनिया का खून हो जाएगा। किससे? स्थूल बांब पहले चलेंगे या निंदा रूपी सूक्ष्म बांब पहले ब्राह्मणों की दुनिया में चलेंगे? कौन सी रिहर्सल पहले होगी? निंदा रूपी सूक्ष्म बांब चलते हैं, जिनमें सबसे बड़ा बांब है परमात्मा प्रत्यक्षता बांब। ये तो अपना ही खून करते हैं। अपना ही खून कैसे? निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। क्यों कहा? इंडिविजुअल निंदा करने से उस आत्मा के पाप धुल जाते हैं। किसके? जिसकी निंदा की जाती है और जो निंदा करता है उसके ऊपर पाप चढ़ जाता है। तो अपना भी खून करते हैं और जो निंदा सुनते हैं ढेर के ढेर उनका भी खून होता है। यहाँ कौन सा खून होता है? संकल्पों का खून होता है। आत्मा की शक्ति है संकल्प। संकल्प शक्ति अगर निंदा की बातों में जाती है, बाप ने तो बताया हियर नो इविल सी नो इविल टाक नो इविल, अगर यही बात हुई जिसके लिए मना किया तो आत्मा का घात जरूर होगा। सिर्फ अपना ही नहीं होगा, जो भी नजदीकी आत्माएं होंगी उन सब का घात करने के निमित्त बन जाते। जैसे मुसलमान लोग बिगड़ते हैं तो फिर तलवार उठाए जो सामने आएगा उनको मारने लग पड़ते हैं, जनून सवार हो जाता है। तो इस समय बुद्धि कोई काम की नहीं रही है, अपने ही विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है क्या? क्या कोई नई बात नहीं है? निंदा जो होती है वो तो ब्राह्मण परिवार में होनी है। कलंकी धर अवतार गाया हुआ है, ये मिट नहीं सकती। ये निंदा जरूर होनी है, पुरानी बात हो गई तुम्हारे लिए, इसलिए तुम तो एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देते हो। तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जानते हो ड्रामा अनुसार उन्हों का भी पार्ट है, किनों का? बम फोड़ने वालों का। ड्रामा के बंधन में वो बंधायमान है। आजकल दुनिया में हंगामा बहुत है। अभी तुम बच्चे हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। किसके साथ है प्रीति बुद्धि? बिंदु बाप के साथ। बिंदु बाप के साथ प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि का तो सवाल ही नहीं। क्यों? वो बिंदु निराकार तो किसी के साथ न प्रीति जोड़ता है न किसी के साथ दुश्मनी करता है। जो प्रीति जोड़ेगा वो कभी दुश्मनी भी कर सकता है। ये तो दुनिया भी बातें हैं। सुप्रीम सोल को इस लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। किसको डाला जा सकता है? हाँ, वो सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है उसके साथ कोई प्रीत बुद्धि और कोई विपरीत बुद्धि बन सकते हैं। तो गायन है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती और प्रीत बुद्धि विजयंती। जो बाप से विपरीत बुद्धि है उनके लिए विनश्यंती गाया हुआ है। अभी इस दुनिया को बदलना तो जरूर है। इस दुनिया को जहाँ विपरीत बुद्धि बने पड़े हैं उस दुनिया को बदलना तो जरूर है। ये भी जानते हो बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी, बाप ने राजयोग सिखलाया था, शास्त्रों में तो टोटल विनाश दिखाई दिया है। 5 पांडव बचे वो भी गल मरे, परंतु टोटल विनाश तो होना ही नहीं है। अगर टोटल विनाश हो फिर तो प्रलय हो जाए। प्रलय माना? हाँ, पूरा ही लीन हो जाए, कुछ न बचे, मनुष्य कोई भी न रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाए। अब ऐसे तो नहीं हो सकता। प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहाँ से आएंगे? दिखाते हैं कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। कहाँ दिखाते हैं? शास्त्रों में। शास्त्रों में जो भी बातें दिखाई हैं वो किस समय की दिखाई है? इसी संगम युग की यादगार बातें दिखाई हुई है। और उन शास्त्रों में जो भी बातें दिखाई हुई हैं उनमें से सार स्वरूप बातें बाबा बोलते हैं ब्रह्मा द्वारा। तो जो सार इसमें क्या हुआ कि कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। अंगूठा माने शास्त्रों में अंगूठा का आकार किसको दिया? आत्मा को अंगूठाकार बताया हुआ है। तो आत्मा को चूसने का मतलब क्या हुआ? वो बच्चा तो स्थूल बच्चा होता है, स्थूल अंगूठा चूसता है, और यहाँ कोई कृष्ण बच्चा स्थूल की तो बात नहीं है। यहाँ तो दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है, और प्रवेश करके आत्मा के आत्मा रूपी अंगूठे का मंथन करती है, दोहन करती है, जिसे कहते हैं चूसना। मनन चिंतन मंथन ही वास्तव में चूसना है। अंगूठा चूसता हुआ काहे पर दिखाया? कौन सी नवैया दिखाई? नवैया काठ की भी नहीं दिखाई, काठ की भी हल्की होती है, उससे भी छोटी और हल्की नवैया दिखाई पीपल के पत्ते की। अब पीपल के पत्ते पर बच्चा कैसे बैठेगा? पीपल का पत्ता माना, पीपल के पत्ते में क्या विशेषता होती है? एक पीपल का ही पत्ता ऐसा है जिसकी डंडी बहुत लंबी होती है और पतली होती है, और जब हवा चलती है तो थोड़े से हवा के झोंके से भी वो पत्ता हिलता है, डोलता है। तूफान चलेंगे तब तो बहुत ही डोलेगा, लेकिन ऐसी नैया पीपल रूपी पत्ते की है जिस पर कृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्मा विराजमान होती है, लेकिन वो पत्ता अर्थात वो नैया डोलती तो है भयंकर गति से, लेकिन डूब नहीं सकती। क्यों नहीं डूब सकती? क्योंकि उस पर एक तो श्रेष्ठ आत्मा भाग्यशाली विराजमान है, और दूसरी बात उसका खिवैया जो है वो स्वयं परमपिता परमात्मा शिव है। तो पीपल का पत्ता, उस पर बैठने वाली कृष्ण की सोल, और वो पीपल का पत्ता कौन हुआ? प्रजापिता पीपल का पत्ता हुआ। जरूर कोई शरीर है। नैया किसको कहा जाता है? शरीर रूपी नैया कही जाती है। तो जरूर शरीर रूपी कोई नैया है पुरुषार्थ करने वाली, कोई ब्राह्मणों की ही बात है। रुद्रमाला है तो रुद्रमाला के जो भी मणके हैं उनमें कोई फर्स्ट मणका भी है और कोई लास्ट मणका भी है, दोनों ही बिल्कुल नजदीकी है। किसके? सुप्रीम सोल के। बल लास्ट मणका है तो भी सबसे नजदीक है, ऐसी उसमें कोई विशेषता भरी हुई है। किसके नजदीक है? सुप्रीम सोल बाप के नजदीक, फूल के नजदीक है। अब आखिरी मणका है तो कमजोर तो जरूर हो जाता है। जैसे लौकिक परिवार में भी देखा जाता है बच्चे श्रुड बुद्धि हो जाएंगे, बच्चियां श्रुड बुद्धि हो जाएंगी, हेल्दी बन जाएंगी, और माता का क्या हाल? खोल के बैठ जाती हैं उनकी वंदना होती है कि स्वर्ग का द्वार खोल करके बैठती हैं उनकी वंदना होती है? वंदना तो जरूर पवित्र की जाती है, अपवित्र की कभी वंदना नहीं की जाती है। तो वो पीपल का पत्ता हुआ कौन? जगदम्बा, जो सारे सृष्टि की अम्बा है, जिसके ऊपर कितना भयंकर कलंक लगाया गया। क्या? कि कृष्ण बच्चा ही तेरा पति है। उसकी मन बुद्धि के ऊपर भी ये छाप डाल दी जाती है कि कृष्ण बच्चा तेरा पति, और सारी दुनिया भी यही बात समझती है कि कृष्ण बच्चा तेरा पति है। तो ऐसी पीपल की नवैया के ऊपर कृष्ण बच्चा अंगूठा चूसता हुआ प्रत्यक्ष होता है। कहाँ प्रत्यक्ष होता है? सागर में। कौन सा सागर है? ज्ञान सागर भी है और फिर ये दुनिया विषय सागर भी है। क्षीर सागर तो बाद में बनेगा। जो शास्त्रों में कृष्ण बच्चे को पीपल के पत्ते पर शशि के आदि में दिखाया हुआ है वो है हिलोरे मारता हुआ। झंझावात के बीच में पीपल के पत्ते की नवैया कैसे टिकी रहती है एक आश्चर्य की बात है। इतनी हल्की नैया और इतने झंझावात के बीच में और ऐसे भयंकर विषय सागर में कैसे टिकती है देखने वालों को आश्चर्य होता है। कभी लगता है कि नैया डूबी की डूबी डूबी लेकिन डूबती नहीं है। शक्ति की नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। बाप कहते हैं बालक ऐसे कैसे आ सकता है कि कोई स्थूल पत्ता हो स्थूल सागर हो और उसमें कोई बच्चा बैठा हुआ हो नई सृष्टि पैदा करने के लिए। तो कैसे का जवाब मिला? ये बेहद की बात है। कोई हद के बच्चे की हद के पीपल के पत्ते की हद के सागर की बात जड़ सागर की बात नहीं है। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी है जो बात मत पूछो। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को ज्ञान बाण लगने हैं। किनके द्वारा? माताओं के द्वारा नहीं बताया। किसके द्वारा बताया? कुमारियों के द्वारा। कौन से बाण? ज्ञान के बाण लगने हैं। वो भी आगे चल करके आएंगे। कौन? जो साधु सन्यासी हैं वो भी आवेंगे। अभी तो बहुत मगरूरी में है। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरते जावेंगे बाप का परिचय सबको देते रहेंगे उतना तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। हाँ विघ्न भी पड़ेंगे। ये भी गाया हुआ है। कौन से विघ्न? क्या गाया हुआ है शास्त्रों में? ये गाया हुआ है कि ऋषि मुनि जब यज्ञ रचते थे तो असुर आकर के उसमें कौन सा विघ्न डालते थे? कचरा डालते थे। ज्ञान रत्नों के बीच में क्या डाल देते थे? कचरा डाल देते थे। कौन सा कचरा है? हाँ विकारों का कचरा डालते थे। विकारी बातों का कचरा डालते थे और निंदा रूपी कचरा डालते थे व्यर्थ बातों का। तो गाया हुआ है आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। तुम जानते हो नई दुनिया के लिए नई बातें हैं। बाप कहते हैं ये राजयोग तुमको और कोई नहीं सिखला सकता। ज्ञान और योग बाप ही सिखलाए रहे हैं। बाकी भक्ति मार्ग में तो गपोड़े बहुत हैं। सदगति दाता एक ही बाप है वो ही पतितों को पावन बनाते हैं तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना? है? नाम क्या पड़ा हुआ है? पतित पावन। किसको पावन बनाने वाला है? पतितों को पावन बनाने वाला है तो ज्ञान लेने वाले भी कौन होंगे? पतित ही होंगे ना? और पतित ही सारे भगवान के पास जाके इकट्ठे होंगे। इतने इकट्ठे हो जाएंगे जो पहाड़ बन जाता है। नाम रख दिया गोवर्धन पहाड़। फिर नाम रख दिया माउंट आबू। जितनी दुनिया की बड़ी से बड़ी बदबू छोड़ने वाली आत्माएं हैं पतित से पतित गलीज से गलीज भारत के राजाएं तो सबसे जास्ती पतित हुए। वही राजाई का वर्षा प्राप्त करने वाले जब परमात्मा बाप आते हैं तो इर्द गिर्द उसके इकट्ठे हो जाते हैं जैसे बदबू का पहाड़ इकट्ठा हो गया हो। कोई स्थूल पहाड़ की बात नहीं है। ये भी बेहद की बात है। नाम क्या पड़ा? माउंट आबू। आ माना आना, बू माना बदबू और माउंट माने पहाड़। माना सारी दुनिया की जो भी बदबू वाली आत्माएं हैं उनका पहाड़ आकर के इकट्ठा हो जाता है। तो पतितों को पावन बनाते हैं तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे। इसमें ग्लानी करने की कोई बात नहीं है। बाप को कब सर्वव्यापी माना जा सकता है क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्वव्यापी है, सब में प्रवेश करता है। तुम बच्चे समझते हो हम पारस बुद्धि बन पारस बुद्धि बनाते हैं। मनुष्यों ने मंदिर कितने ढेर बनाए परंतु वो कौन है, क्या करके गए हैं, अर्थ नहीं समझते। पारसनाथ का मंदिर है, मंदिर माना यादगार। भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरात के महल थे। जब ऐसी पुरी थी तो महल अर्थात संगठन कैसे थे? हीरे जवाहरात जैसी श्रेष्ठ आत्माओं के संगठन थे। कल की ही बात है, ऐसे संगठन परमात्मा बाप ने आकर के तैयार किए थे, वो तो लाखों वर्ष कह देते। सिर्फ एक सत्य को ही लाखों वर्ष कह दिया और बाप कहते हैं सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। इसलिए कहा जाता है आज भारत क्या है, कल भारत क्या था। लाखों वर्ष की तो कोई किसी को स्मृति नहीं रह सकती। तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है, जानते हो बाबा हर 5-4 वर्ष के बाद आकर के हमको स्मृति दिलाते। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, 5-4 वर्ष की बात है, बाबा कहते हैं योग में बैठो, अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तो ये ज्ञान हुआ ना, वो तो हठ योगी है, टांग पर टांग चढ़ा करके बैठते और क्या क्या करते रहते हैं। तुम माताएं तो ऐसे नहीं कर सकती हो कि टांग पे टांग चढ़ाए घंटों बैठी रहो, बैठ ही नहीं सकती। कितने ढेर चित्र भक्ति मार्ग के बनाए हुए हैं। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे ये कुछ करने की तुमको दरकार नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट कायदे से तो बैठते हैं, तो जब क्लास लगता है तो कायदे से बैठना पड़े। बाकी कोई योग लगाने के लिए कोई टांग पर टांग चढ़ा करके बैठना है, ये कोई जरूरी नहीं है। बाप तो वो भी नहीं कहते कि हाँ क्लास में तुम टांग कोई स्थिरियम होकर के कोई खास आसन पर ही बैठे। ये तो बिल्कुल सहज समझने की बात है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। बल्कि कितना भी बीमार हो सकता है सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते उसके प्राण तन से निकल जाए। गाया जाता है ना, गंगा जल मुख में हो तब प्राण तन से निकले। वो तो सब है भक्ति मार्ग की झूठी बात है, वास्तव में है ये ज्ञान अमृत की बात। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण तन से निकलने हैं। तुम बच्चे जीते जी बाप के बनते हो। तुम बच्चे जाते हो परम धाम से, बाप को छोड़कर जाते हो। बाप कहते हम तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा, तुम मुझे छोड़कर जाते हो और मैं तुमको आया हूँ साथ ले जाने के लिए। मैं आया हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको ना अपने घर का पता है ना आत्मा का पता है। माया ने तुम्हारे बिल्कुल ही पंख काट दिए। कौन से पंख? न तुम ज्ञान में उड़ सकते हो तीखे, मनन चिंतन मंथन में तुम्हारी बुद्धि नहीं बन पाती और न याद में तुम तीखे उड़ सकते हो। न तुम्हारी सहज याद बन सकती है और न निरंतर याद बन सकती है, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती है क्योंकि तमो प्रधान हो गए। जब तक सतो प्रधान न बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकते। ये भी जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। इस समय सारा झार जर्जरीभूत हो गया है, यहाँ तो किसकी सतो प्रधान अवस्था हो नहीं सकती। कहाँ संगम युग में भी दो छेड़े हैं, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। तो जब तक सतयुग का आदि नहीं होता तब तक यहाँ संगम युग में भी किसी की सतो प्रधान अवस्था हो जाए, देवताई अवस्था हो जाए, वो नहीं हो सकता, सदा काल के लिए नहीं हो सकता। अल्पकाल के लिए तो अवस्था अनुसार हो सकता है। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहरेगी नहीं, कहाँ ठहरेगी? फिर तो उसके लिए पावन दुनिया चाहिए है? फर्स्ट नंबर वाले के लिए दुनिया में सिर्फ एक ही चाहिए या दुनिया में दो चार आठ होते हैं? कम से कम कितने चाहिए? कुछ तो चाहिए, नहीं तो दुनिया काय की कही जाएगी? एक से दुनिया बन जाएगी? चलो एक का वायुमंडल सुधर गया, एक ने अपने वायुमंडल को पवित्र बना लिया, तो बात ठीक है। पतित दुनिया में मरेंगे तो पतित दुनिया में जन्म लेंगे, नरक में मरेंगे तो नरक में जन्म लेंगे, और स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में जन्म लेंगे। ये तो बोला है वो ठीक है, लेकिन स्वर्ग होगा ही नहीं कभी, तो स्वर्ग में मरेंगे कैसे? तो क्या करना पड़े? जरूर कोई ऐसी आत्माएं श्रेष्ठ निकलती हैं जो इतना पुरुषार्थ करती हैं कि धर्मराज के डंडे नहीं खाती, पास विदानर की लिस्ट में निकलती है। ऐसी आत्माओं का संगठन तैयार होता है, वो भी एक छोटी मोटी दुनिया होती है। उस छोटी सी दुनिया में हर धर्म का बीज समाया हुआ है। कैसे? जो आठ पास विदानर होंगे और सब धर्मों के बीज हुए तो सारी दुनिया किस में समाई हुई है? उन्हीं आठ और नौ ग्रहों में सारी दुनिया समाई हुई है। तो दुनिया उनकी कैसी हो गई? आठ नौ का वायुमंडल सारा ही कैसा बना हुआ होगा? तत्व प्रधान वायुमंडल हो। तो ऐसे वायुमंडल के बीच में जो भी उनके संसर्ग संपर्क में आकर के शरीर छोड़ेंगे वो कहाँ जन्म लेंगे? जरूर स्वर्गीय दुनिया में जन्म लेंगे। तो यहाँ तो आत्मा पवित्र बन जाए फिर तो एकदम भाग जाए। कहाँ भागेगी? सत्युग भाग जाएगी। सत्युग है कहाँ जो भाग जाएगी? सत्व प्रधान बन जाए का मतलब कोई शरीर से भागने की बात नहीं है, लेकिन ऊंची स्टेज में भागेगी। इस पतित नरक की दुनिया में वो आत्मा मन बुद्धि से टिकेगी नहीं, उसको इस दुनिया में अच्छा ही नहीं लगेगा। इसलिए वाणी में बोला हुआ है, तुम बच्चे इसी दुनिया में परम धाम को उतार लेंगे। तो परम धाम को उतारने का मतलब क्या हुआ? जरूर कोई ऐसा संगठन तैयार होगा जहाँ बाप भी होगा और बाप की रूहानी स्टेज में रहने वाले बच्चे भी होंगे। सब भक्ति करते ही है मुक्ति के लिए, परंतु कोई भी वापस नहीं जा सकता। ये ला नहीं कहता, बाप ये सब राज बैठ समझाते हैं धारण करने के लिए। ये राज की बात है, इस बात को सब नहीं समझ सकेंगे, फिर भी मुख्य बात है बाप को याद करना, सुदर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। क्या कहा? तो बीज कौन हुआ? बाप भी कौन? बाप भी तो दो हो गए बेहद के, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्य सृष्टि का बाप, दोनों बेहद के बाप हैं। सारा झाड़ की नाली जो बुद्धि में आ जाए इसके लिए कौन बुद्धि में रहना चाहिए? बीज बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ साकार है तो बीज भी कैसा होगा? साकार होगा। अगर उस साकार बीज की नॉलेज सारी बुद्धि में आ जाए तो जैसे सारे झाड़ की नॉलेज समाई जाती है। एक बीज को स्नेह का पानी अगर मिलता है तो सारे झाड़ को पानी मिल जाता। पत्ते पत्ते को पानी देने से जड़ों में पानी नहीं पहुंचेगा, लेकिन बीज में अगर पानी मिलेगा तो सारे वृक्ष में पानी मिल जाएगा। सबकी याद करने के लिए किसने बोला? हमारी निवृत्ति मार्ग की याद है या प्रवृत्ति मार्ग की याद है? हम किस मार्ग वाले हैं? प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं ना। आत्मा के बगैर शरीर कुछ कर सकता है क्या? शरीर के बगैर आत्मा कुछ कर सकती है क्या? सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु अगर शरीर धारण न करे तो जड़वत नहीं है क्या? वो जड़वत है। प्रजापिता भी जड़वत है, वो भी शव है। कब तक? जब तक उसमें सुप्रीम सोल प्रवेश न करे। दुनिया में तो किसको पता नहीं है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कौन है। सभी का बीज एक बाप है, कृष्ण भगवान नहीं है क्या? वो तो पहला पत्ता है। कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं। ऐसे नहीं कि कोई तक्षक सर पर न डसा तब काला हो गया। श्याम सुंदर जो कहते हैं वो किसने की यादगार है? कैसे? दोनों नाम क्यों सर पर रख दिए हैं श्याम सुंदर? या तो श्याम होगा पति तो होगा, या सुंदर होगा पावन होगा, दोनों एक साथ कैसे होगा? जरूर कोई ऐसा शरीरधारी है जो उसी शरीर से पतित पने का भी पार्ट बजाता है और उसी शरीर से अंत में पावन भी बन जाता है। ऐसे नहीं कि 69 तक दादा लेखराज कृष्ण की सोल श्याम है और सतयुग में जाकर के बच्चे के रूप में जन्म लेकर के सुंदर बनेगी तो दो शरीर हो गए या एक शरीर हुआ? दो शरीरों का नाम श्याम सुंदर है या एक शरीरधारी का नाम श्याम सुंदर है? जरूर एक शरीरधारी है जिसका नाम श्याम सुंदर है। तो वही कृष्ण की सोल, ब्रह्मा की सोल कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है और प्रवेश करके श्याम पार्टी भी बजाती है और सुंदर पार्टी भी बजाती है। ऐसे नहीं कि कोई काला तक्षक सर्प है जिसने डस लिया। सर्प मानो काम विकार। ये तो काम चिता पर चढ़ने से मनुष्य काला हो जाता है। तक्षक सर्प माने तक्षण डसे और तक्षण ही काला हो जाए, मर जाए। साधारण सर्प नहीं, तक्षक माने तक्षण असर करने वाला। राम को भी काला दिखाते हैं और कृष्ण को भी काला दिखाते हैं। कृष्ण को तो दिखाते हैं तक्षक सर्प ने डस लिया, अच्छा राम को किसने डसा? राम को नहीं बताते किसने डसा, तो काला क्यों दिखाया है राम को? जरूर संगम युग की ही बातें हैं। राम को भी काला दिखाते हैं, कृष्ण को भी काला दिखाते हैं। राम और कृष्ण की आत्मा एक ही शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष होती है संसार में, इसलिए राम को भी काला दिखाया तो कृष्ण को भी काला दिखाया। ऐसे नहीं है कि उनको कोई सर्प ने डसा है। स्थूल सर्प की बात नहीं है, कुछ भी समझते नहीं है, फिर भी जिनकी तकदीर में है निश्चय है तो जरूर पाप से बरसा लेंगे, और जिनकी तकदीर में नहीं है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि बनेंगे। क्या विपरीत बुद्धि बनेंगे? बाप को पहचानेंगे नहीं, निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे। पहली मुख्य बात क्या है? कोई भी जिज्ञासु हो तो पहले उसको क्या समझना पड़े या उसको क्या समझाना पड़े? पहले बाप का परिचय देना पड़े। बाप का परिचय जब तक पूरा बुद्धि में नहीं बैठा है तब तक कोई बात नहीं समझेगा। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करेंगे? तकदीर में नहीं है तो फिर वो बैठते ही ऐसे हैं जैसे कुछ भी समझते नहीं है। इतना भी निश्चय नहीं कि बाप आया हुआ है बेहद का वर्षा देने के लिए है? बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही देने के लिए आया हुआ है तो क्या बीच में चला जाएगा क्या? आया हुआ है तो जरूर वर्षा देकर ही जाएगा, जरूर कोई विश्व का बादशाह भी बनेगा, वर्षा लेगा और सारी दुनिया को कंट्रोल करेगा। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में आकर के बैठ जाए तो क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं समझेगा। यहाँ भी ऐसे ऐसे आकर के बैठ जाते हैं। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है, वो फिर आकर क्या करेंगे? राजधानी स्थापन होती है तो नौकर चाकर प्रजा, और प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए, तो ऐसे ऐसे भी आ जाते हैं। कोई तो बहुत अच्छी रीति समझते हैं, ओपिनियन भी लिख देते हैं, आगे चल कुछ भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु उनका पढ़ना है बहुत मुश्किल, क्योंकि उस समय बहुत हंगामा शुरू हो जाएगा, दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं, इतने सेंटर से हैं, कई आकर के अच्छी रीति समझेंगे भी, ये भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, कहाँ लिखा हुआ है शास्त्रों में, तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना काई की स्थापना है, स्वर्ग की स्थापना, नई दुनिया की स्थापना, तो नई दुनिया आ गई क्या, नई दुनिया अभी तो नहीं आई, या क्या ऐसे कहें कि सुखधाम शांति धाम ईंटों का धाम बनाए दिया तो नई दुनिया हो गई, ऐसे तो उस भक्ति मार्ग में भी ऋषिकेश में स्वर्ग आश्रम बनाए दिए, वो कोई स्वर्ग आश्रम तो स्वर्ग थोड़ा ही हो गया, तो जरूर प्रैक्टिकल में आकर के बाप ऐसा संगठन इस दुनिया में तैयार करते हैं, नरक की दुनिया के बीच हमको आकर के स्वर्ग का वर्षा मिलता है, विनाश तो होना ही है। अब कहते हैं जन्म कम है, परंतु ये झाड़ की वृद्धि तो जरूर होगी, जब तक बाप है तब तक सब धर्म की आत्माओं को यहाँ रहना ही है, ऐसे नहीं कोई आत्मा वापस जा सकती है, जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद हो जाएगा, किसके जाने का समय होगा, बाप के जाने का समय जब होगा तो इस दुनिया की आबादी बढ़ना बंद हो जाएगी, अभी तो सबको आना ही है, परंतु ये बातें कोई समझते नहीं है, कहते भी हैं भक्तों का रक्षक भगवान, तो जरूर भक्तों पर आपदा आती है, रावण राज्य में बिल्कुल ही सब पाप आत्मा बन पड़े, रावण राज्य है कलयुग अंत में, राम राज्य है सतयुग आदि में, क्या कहा, पूरे सतयुग में नहीं बताया, राम राज्य कब बताया, सतयुग के आदि में पहले जन्म में, और रावण राज्य है कलयुग के अंत में, माना पूरे कलयुग में द्वापर युग में रावण नहीं होता है, उस समय रावण का पुतला भी नहीं बन सकता सही, क्योंकि कोई रावण को जानता भी नहीं, ये दस सिर किस बात की निशानी है, दस सिर का जो पुतला बनाया जाता है, चित्र बनाया जाता है, ये कौन से चरित्रधारी हैं दस सिर जिनका ये पुतला बनाया जाता है, हाँ तो इस समय सब आसुरी रावण संप्रदाय, कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब ये नरक है ना, स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा नाम है ना, यहाँ तब क्या था, जरूर नरकवासी था, ये भी समझते नहीं है कि हम नरकवासी हैं, अब तुम समझते हो बाप ही आकर के स्वर्गवासी बनाएंगे, गाया भी जाता है हेवनली गॉड फादर, जब नाम हेवनली गॉड फादर है तो जरूर हेवन की रचना करने वाला है, कोई मनुष्य हेवन की रचना नहीं करता, वो हेवनली गॉड फादर ही आकर हेवन स्थापन करेंगे, तभी गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, हम पतित हैं, पावन बनाने वाले आप हो, किसको बताते हैं, सीता और राम का नाम लेते हैं, वो तो सब है भक्ति मार्ग की सीता है, बाप है राम, किसको सीधा कहो तो मानते नहीं है कि राम बाप एक है, जो रावण से मुक्त है और सीताएं अनेक हैं, राम को बुलाते हैं, अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, तुम जैसे कि अलग दुनिया के हो गए, कौन, जिनको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया, पुरानी दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं, तुम बच्चे अभी बेसमझ से समझदार बने हो, रावण ने तुमको कितना बेसमझ बनाई दिया, एक तरफ कहते हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार जिये नगरी बसे दाता धर्म का उपकार, और दूसरी तरफ कहते हैं कि सीता को ले गया, तो धर्म का उपकार हुआ, राम का राज्य हुआ, फिर तो रावण का राज्य हो गया, तो बातें कहाँ की हैं, भगवान की स्त्री कोई चुरा ले जाए ये हो सकता है क्या, तुम अभी ऐसी बातें नहीं सुनेंगे, भारत के पूज्य देवता है उनके लिए ऐसी ऐसी बातें कहना, कितनी बातें लिख दी शास्त्रों में, आग से पार हुई कौन सीता, ये कौन सी आग है, ताम अग्नि की आग से पार हुई, ये हुआ। ऐसी ऐसी बातें लिखी। अब सन्यासी लोग दवाई लगा करके आग से चलते हैं, ऐसे नकल करते हैं। कितने मनुष्य देखने जाते हैं टिकट पर, कितनी दुनिया में ठगी है, है कौन सी आग की बात और वो कौन सी आग पे चलते हैं, वो स्थूल अग्नि पर चलते हैं। बाप समझाते हैं, अभी सब तमो प्रधान, तमो प्रधान भी जरूर बनना है, तब तो बाप आकर सतो प्रधान बनाए। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, कहते हैं भल तुम बच्चे सर्विस भी अपनी करते हो, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। सतो प्रधान बनने का और कोई रास्ता बता नहीं सकता है, सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है, वो ही आकर के आत्मा को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है अविनाशी सर्जन, क्योंकि और सर्जन है उनको बीमारी लग सकती है और वो खलास हो सकते हैं, लेकिन ये सर्जन कैसा है, इसको वो विकारों की बीमारी का संग का रंग ऐसा नहीं लग सकता जो वो खलास हो जाए, कांस्टेंट संग का रंग उसको लग नहीं सकता। दुनिया में जो भी मनुष्य आत्मा है सबको संग का रंग लगता है, राम हो, कृष्ण हो, इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, विवेकानंद हो, सबको संग का रंग लगता है, सब नीचे गिरते हैं। एक ही सुप्रीम सोल ऐसा है कि जिस तन में पार्ट बजाता है प्रवेश करके, वो ऐसा पार्ट बजाता है जिस पर कोई संग का रंग ठहर नहीं सकता। माना राम वाली आत्मा पर कुछ संग का रंग ठहरेगा, लेकिन सुप्रीम सोल बाप के प्रवेश होने से वो तत्काल दूर भी हो जाएगा, और आत्माओं को पुरुषार्थ करने में टाइम लगेगा, नीचे गिरने के बाद उठने में टाइम लग जाएगा, और उस आत्मा को टाइम जाती नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि सुप्रीम सोल बाप की प्रवेश है। तो ये अविनाशी सर्जन कहा जाता है। अविनाशी माना क्या हुआ, जैसे वो सर्जन होते हैं अपनी सेफ्टी के लिए ऐसे कपड़े पहनते हैं, नाक पर पट्टा बांधते हैं ताकि जर्म्स असर न कर जाए, जानते हैं ना कि हो सकता है कि ऐजे का प्रकोप हमारे ऊपर भी हो जाए। तो ये रूहानी बाप जिस तन में प्रवेश करते हैं वो डरते नहीं है बीमारी से। कौन सी बीमारी है यहाँ जो सारी दुनिया को लगी हुई है, पांच विकारों की बीमारी, और पांच विकारों में भी मुख्य विकार कौन सा है जिसको पहले भस्म करते हैं, काम विकार। तो शास्त्रों में दिखाया हुआ है कि कामदेव को भस्म किया, अब वो कोई देवता थोड़े ही है जिसको भस्म किया। हाँ, देवता अंत में बन जाता है, वो कोई काम विकार का पार्ट बजाने वाला कोई मुख्य है, मुखिया सब कामियों का बीज है कोई, जो देवता भी बन जाता है 84 जन्म लेने वाला।